मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 17 नवंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं देता हूं और साथ ही साथ कुछ अलग बातें भी मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। पहले तो मैं रूटीन की सूचना दे दूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही शनिवार को हम पढ़ने के लिए कुछ और चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें योजना के हिंदी अंग्रेजी के आर्टिकल्स होते हैं और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी हिंदी और अंग्रेजी के आर्टिकल्स होते हैं। साथ ही आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वह आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे जो सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। ये मित्रों हर शुक्रवार को दी जाने वाली सूचना का रिपीटेशन है। मेरे पास आज थोड़ी सी कुछ दूसरी सूचनाएं भी हैं। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं कि जब मेरा पहला यूट्यूब पर एक प्रोग्राम आया था जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें प्री को भी लेकर चलता हूं, तो आप सबका बड़ा उत्साह वर्धक उसमें आप सबकी प्रतिक्रियाएं रही। आप सब ने उसे बहुत अधिक सराहा और सच पूछिए तो इसकी जरूरत भी बेहद है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो सिलेबस सिविल सर्विस ने दिया हुआ है या यू कह लीजिए यूपीएससी ने दिया हुआ है सिविल सर्विस के लिए, वो बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है। और देखिए, जो स्टूडेंट है 21 22 23 साल की उम्र है या जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, उनके लिए तो उस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यही सोच करके हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, स्टूडेंट को सिलेबस से बहुत अच्छे तरीके से परिचित कराया जाना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस ही ठीक से मालूम नहीं होगा तो फिर तैयारी कैसे ठीक से हो सकेगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोगों ने जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का सिलेबस प्रोवाइड किया, उस पर आप सबकी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया रही और उसी बात को ध्यान में रख करके अब यूट्यूब पर नेक्स्ट प्रोग्राम डाला गया है जिसमें जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के सिलेबस को स्पष्ट किया गया है। यह यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं। मित्रों, मुझे यह कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यह कहना चाहिए, खासकर चूंकि वो मुझे बहुत जरूरी बात लगती है, और भैया कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को इसे देखना ही चाहिए। जो स्टूडेंट बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हैं, वो भी एक बार देख लें और इसके बाद उन्हें जरूरत महसूस न होती हो तो दोबारा न देखें। हो सकता है कि एक बार देखने पर उन्हें कोई पॉइंट मिल जाए, और जो अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं या जो सिलेबस के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्हें तो ये कई कई बार देखना चाहिए, क्योंकि एक बार देखने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो मित्रों, यह एक सूचना थी सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब एक सूचना है फ्रेंड्स, जो हमारे सेवंथ बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, जो क्लासेस 15 दिन की आपकी लगी और उसमें जो प्रेजेंटेशंस हुए उनके जो नोट्स हैं वो सभी आपके ईमेल पर भेजे जा चुके हैं, आप लोगों को भेजे जा चुके हैं, आप उन्हें देख लें। साथ ही साथ जो आपका पूरा बैच है उस बैच की पूरी लिस्ट आप जो ईमेल एड्रेसेस के साथ वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं उसे भी चेक कर लें, और साथ ही फोटोग्राफ्स भी डाल दिए गए हैं। तो ये तीनों चीजें, क्लास प्रेजेंटेशंस वाले नोट्स, ईमेल एड्रेसेस जो आपके बैच के हैं और फोटोग्राफ्स आप लोगों को भेज दिए गए हैं, आप सब उसे देख लेंगे। मित्रों, एक दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इससे पहले मैंने आर्द्रता पर आप लोगों से एक दो पंक्ति में उत्तर लिखने के लिए कहा था, आप लोगों ने लिखकर भेजा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, केवल सेवंथ बैच के स्टूडेंट के लिए नहीं था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्लीज, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको कुछ लिखने के लिए कहता हूं कि आप भेजिए, तो आप अधिकतम केवल कल तक उसे भेज दें, दैट्स ऑल, कल शाम तक वो भेज दिए जाने चाहिए। अगर उसके बाद आप भेजते रहेंगे तो वो आप यूं समझ लीजिए कि उसे पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा ही हुआ, कल मुझे ढेर सारे आर्द्रता पर आंसर मिले हैं, तीन दिन के बाद क्या जरूरत है? अगर आप उसे तुरंत नहीं कर सकते हैं सुनने के बाद, तो मुझे लगता है कि फिर भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ढंग से उसे लिखिए और अपने ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना? लेकिन यदि आप भेजना चाह रहे हैं, यदि मैंने कहा है तो, यदि आप भेजना चाह रहे हैं तो प्लीज वक्त का ध्यान रखें। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और अगर इतनी ढिलाई होगी कि जब हमारा मन आएगा तब हम भेजेंगे, तो ये मान करके चल कि उसकी तीव्रता खत्म हो गई है। अब तो फिर एक नई चीज आ गई है, है ना? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट सेवंथ बैच के इस तथ्य को लेकर के परेशान हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि आप सब यहां से जाने के बाद और एक महीने तक फिर उसी पैटर्न पर तैयारी करने के लिए वक्त निकालें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मित्रों, ये एक सामान्य सी बात है। अगर आप कर सकते हैं तो उसका डेफिनेटली आपको कुछ अतिरिक्त फायदा मिल जाएगा। और अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 15 दिन आपके बेकार चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 दिन तक बहुत विस्तार से, बड़े ध्यान से आपने चीजों को समझा है, फिर आपके पास प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए कि जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दिया गया है, आप उस प्रेजेंटेशन को पढ़िए, पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि क्लास में आपने क्या क्या सुना है, ढेर सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा अस्त्र आपके पास मौजूद है। वो एक मिरर की तरह है जिसमें आप अपने 15 दिन की क्लासेस को देख सकते हैं। तो इसीलिए यदि किसी वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइए। जैसे ही समय निकले कोशिश कीजिए प्राथमिकता के आधार पर, तो तब कर लीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? मित्रों, आइए अब हम अपने न्यूज पर आते हैं और आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग उसी नैतिकता के अंतिम चरण पर बात करेंगे। जो मुझे थोड़ी सी और बात आप लोगों से करनी थी उसे हम देखेंगे। पहले थोड़े से न्यूज को देख लेते हैं। मित्रों, सच पूछे तो आज कोई खास न्यूज नहीं है, मात्र एक न्यूज आपने सुनी होगी। आज नहीं है का मतलब कल के न्यूज की मैं बात कर रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुनाफा विरोधी अधिकरण को मंजूरी दी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो मुनाफा विरोधी जो अधिकरण है, एक तो ये ट्रिब्यूनल प्राधिकरण अथॉरिटी की तरह है, ये न्यायालय नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा। और दूसरा ये कि इसका उद्देश्य ये है कि आप देखिए कि सरकार लगातार जीएसटी में छूट देती जा रही है ना। अभी अभी लगभग 200 वस्तुओं को उसने 28% से हटा करके और नीचे वाले स्लैब में उसने डाला है। लेकिन शिकायतें सरकार को यह मिल रही है कि सरकार ने तो छूट दे दी है लेकिन यह छूट ग्राहकों को नहीं मिल पा रही है, ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या करे? तो उसके लिए सरकार ने यह अधिकरण प्राधिकरण, देखिए न्यूज में अधिकरण शब्द है और अखबारों में प्राधिकरण शब्द है, लेकिन हमें न्यूज, चूंकि वो सरकारी न्यूज है और वहां का जो ट्रांसलेशन हो ज्यादा विश्वसनीय होगा, तो हम इसके लिए अधिकरण शब्द ही प्रयोग करें तो बेहतर होगा। तो वहां ग्राहक शिकायत कर सकते हैं और फिर ये जो अधिकरण है उन शिकायतों का निवारण करेगा। बस इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से अपील होंगी और क्या होंगी, मुझे लगता है कि जब इसके बारे में डिटेल आएंगी तो आप एक दो बार उन्हें देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, एक जो अखबार में जो खबर छपी है और यूट्यूब पर भी मुझे देखने को मिला और आज के हिंदू में भी वो खबर आई है, हिंदू अखबार में, और वो ये है कि सरकार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न में परिवर्तन करने के पर विचार कर रही है, राइट? मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूं क्योंकि इस बीच में कुछ फोन भी मैडम के पास आए हैं इस खबर को लेकर के और वो कुछ तथ्य जानना चाह रहे थे। देखिए, इसको लेकर के आपको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार जो परिवर्तन करेगी भी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यू टर्न होगा कि एकदम चीजें बदल दी जाएंगी, अभी कुछ है और बाद में कुछ हो जाएंगी। जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही सामान्य किस्म के परिवर्तन होते हैं और जो ठोस तरीके से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इन परिवर्तनों से उनको कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या कह लीजिए दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। दो परिवर्तन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिनकी बात अभी अखबारों में और दूसरे माध्यमों से हम लोगों को पता लग रही है। पहला है एज लिमिट, कि उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा घटाई जा सकती है। देखिए ऑलरेडी 30-32 साल जनरल कैटेगरी में उम्र सीमा हो गई है, तो मैं समझता हूँ आपको नहीं लगता कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। हम लोग के समय में 26 ईयर्स हुआ करती थी, 1980 की मैं बात बता रहा हूं, उससे पहले वो 20 उससे भी कम हुआ करती थी। तो मित्रों अगर उम्र घटाई जाएगी तो याद रखिए कि वो सडन नहीं घटाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको 32 से घटा करके सीधे 26 कर दिया जाएगा। देखिए सरकार कोई भी संस्था हो या सरकार हो, चीजें तो कभी भी आपको दे सकती है अगर लाभ की स्थिति में आप हैं, लेकिन अगर दी हुई चीजों को विथड्रॉ कर रही है तो उसको एक प्रक्रिया के तहत ही वो विथड्रॉ करेगी, है ना। तो अगर वो उम्र घटाएगी भी तो मान करके चलिए कि उसके लिए बीच में आपको कुछ वर्ष दिए जाएंगे कि इसके बाद उम्र सीमा इतनी हो जाएगी, ताकि जो उस बिल्कुल किनारे पहुंचे हुए हैं उम्र के उसमें और जो अभी इसके लिए आधिकारिक थे कि वो एग्जाम में बैठ सकते हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचे, तो उसका बकायदे एक फार्मूला होगा। इसलिए बहुत पैनिक मत होइए। हाँ ये जरूर है कि अगर आप हायर एज में जा रहे हैं तो फिर अभी से आपको अपने चांस का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अब जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है 2018 उसमें आपको बैठना ही चाहिए। दूसरी बात है कि जो परिवर्तन की बात हो रही है वह है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, और यह आपके बहुत फेवर की बात है। यह सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए जाएंगे ताकि सभी स्टूडेंट बिल्कुल सेम प्लेइंग फील्ड पर आ जाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के आप देखिए कि आप लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, कौन सा लें, कौन सा स्कोरिंग है, किसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, इसको लेकर के बड़ी आपाधापी मची रहती है। और मैं तो समझता हूं कि यह ज्यादा वैज्ञानिक होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म कर दिया जाए। देखिए हम लोगों के समय में तो 2 ऑप्शनल थे, अब वो 1 ऑप्शनल कर दिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सिलेक्शन के प्रोसीजर में। हम लोगों के समय में तो प्री में भी 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब वहां भी खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पर सी सेट नाम का पेपर ला दिया गया, वो भी क्वालिफाइंग है। तो अगर वो ऑप्शनल खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस में जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो किसी मायने में थोड़ा सा कम स्तरीय होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो खत्म कर दिया जाता है तो आपके फेवर में होगा, अच्छी बात है, आप कम मेहनत करनी पड़ेगी, एक विषय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसकी जगह पर सिर्फ यूपीएससी क्या करती है ये आगे देखने और समझने की बात है। अगर 1-2 और जनरल स्टडीज के पेपर डाल देती है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, आप वो पेपर तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मित्रों कुल मिलाकर के ये है कि बहुत ज्यादा इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हेरा फेर अदला बदलाव होने वाला है, 1-2 और एडिशन हो जाएंगे तो उसकी आप तैयारी कर लीजिएगा ऑप्शनल पेपर की जगह। हाँ ये जरूर है कि अगर आप चाहें तो अभी थोड़ा सा ऑप्शनल की तैयारी को थोड़ा धीमा कर दें, लेट अस सी, क्योंकि ज्यादा उम्मीद यही लग रही कि अभी जब सरकार अपने विज्ञापन निकालेगी, यूपीएससी विज्ञापन जब निकालेगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 2018 के लिए, तो शायद डिक्लेयर इस कर दे, तो थोड़ा सा ऑप्शनल की तैयारी को धीमा कर दें और अपने जनरल स्टडीज की तैयारी में लग जाएं। तो मित्रों कुल मिलाकर ये बात मुझे आपसे करनी थी। दोस्तों वक्त काफी हो चला है और आइए मैं अब जो नैतिकता पर जो मुझे बात करनी थी, इनफैक्ट सच पूछे तो मुझे अब आपको कुछ प्रश्न पढ़कर सुनाने हैं जो नैतिकता से संबंधित जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं इसके आधार पर केवल ये बताना चाह रहा हूं खासकर कि देखिए नैतिकता पर जो आपको तैयारी करनी होगी या 4th पेपर के जो दूसरे भी विषय जो टॉपिक्स हैं उन पर जो तैयारी करनी होगी उसमें किताब आपकी ज्यादा मदद नहीं करेंगे। किताब से केवल आप उन तथ्यों के चरित्र के बारे में जान सकते हैं कि सद्भावना क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, चरित्र आचरण क्या होता है, इनके अंतर को आप बारीकी से समझ लीजिए, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी सच पूछे तो वो समाज से करनी पड़ेगी और बहुत ही व्यावहारिक स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है इसी साल के जनरल स्टडीज के 4th पेपर में, देखिए प्रश्न क्या है और इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप बहुत चलताऊ तरीके से प्रश्न को पढ़ करके और उसे किनारे कर देते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपने प्रश्न को पढ़ा है लेकिन समझा नहीं, आत्मसात नहीं किया है, उससे बात नहीं बनेगी और यही तैयारी करने की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसे आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि क्या है, क्यों है, तभी आप ये पकड़ पाएंगे कि इसमें लिखना क्या है, अदरवाइज तो फिर सारी चीजें सुपरफिशियल हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वो 7वां क्वेश्चन है और उसका ए है, वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सदजीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, विवेचना कीजिए 150 शब्द। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ डिस्कस। अब आप देखिए कि वो सीधे सरल सी एक बात कह रहे हैं, लेकिन यह उतनी सरल नहीं है। इसकी तैयारी आप किताबों से नहीं कर सकते, इसकी तैयारी आपको समाज से करना होगा, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर जाकर करना होगा। जब आप विवेचना करेंगे और आप अगर कोई उदाहरण देना चाहेंगे, दिया ही जाना चाहिए, तो आप अपने लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिए और वेल नोन एग्जाम्पल दीजिए जो वास्तव में लोगों को ज्ञात है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई हो, तभी जाकर के आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो मिल सकेंगे। एक प्रश्न और देख लीजिए मित्रों, आठवां है, आठवें का भी ए है, आठवें का बी है। देखिए उसमें क्या कहते हैं, सामान्यतया साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चा बंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न तो लोकतंत्रीय सरकार, न ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए यहां भी दिया हुआ है समकालीन समय, जहां ये नहीं भी लिखा हो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप उसे पढ़ लें, इसका मतलब ये है समकालीन। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का है। विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, नाइदर द लॉ नॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर इवन द मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शन प्रॉपरली। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशंस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। मित्रों मैंने दो प्रश्न आपको पढ़कर सुनाए हैं, प्रश्न और भी हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने फोर्थ पेपर में जाकर के आप नैतिकता से संबंधित प्रश्नों को ढूंढें, खासकर नौवां प्रश्न आप जरूर पढ़ें जो केस स्टडी से संबंधित है, और गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करें कि इसकी तैयारी होगी कहां से, क्योंकि किताबों की दुनिया से अगर आप नहीं निकल पाएंगे तो फोर्थ पेपर आपके लिए सच मानिए एक कठिन पेपर ही बन जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स पर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक अच्छी बात है कि आज न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स की संख्या काफी कम है। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं मित्रों में से कुछ के नाम हैं, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, शिवांगी गुप्ता, प्रदीप कुमार पटना बिहार से, सहदेव सिंह, हेमंत नागर, विनीत जैन वरायठा मध्य प्रदेश से, रवि कुमार, अरुण सकवार दिल्ली, प्रशांत दीवार भोपाल, शोभित कांत पीलीभीत उत्तर प्रदेश, महिमा शुक्ला, अनिल सिंह, लीलावती कुमार पटना बिहार, प्रसून त्रिपाठी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, सुनील सिंह कासगंज उत्तर प्रदेश, श्वेता राज चंपारण्य, दुर्गेश्वरी त्रिपाठी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, राकेश रंजन दरभंगा बिहार, और शिवांशु कुशवाहा। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब दो दिनों के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और यहीं अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। नमस्कार।